current stay of our Gurudev. In morning, Bhakti Bhai Bhapuri Maharaj, Bharti Maharaj, Paramadvaiti Maharaj, they glorified our Gurudev. I want that there are so many qualified persons. They will give their Pushpanjali in the lotus feet of our Gurudev. So, we will tell first. Shyamrani can come and speak something. You can stand up here.
তোমাকে পিটতে ইচ্ছা কোন সাথী কথা বলতে পারে
I am telling something from Vahe to last date. In मैंने उसको संक्षेप में बतला रहा हूँ मैं बतला रहा हूँ और ये पीछे से बतलाएंगे हमारे गुरु जी की दो परंपराएं हैं एक गुरु परंपरा और दूसरी वंश परंपरा गुरु जी के दोनों ही बहुत उज्ज्वल और उन्नत हैं पहले वंश परंपरा में वैष्णव का वंश परंपरा का कोई महत्व नहीं किसी भी वंश में कैसे भी वो आ सकते हैं चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो हिंदुओं में भी शूद्र भी हो सकते हैं कोई बात जय कृष्ण तत्त्ववेत्ता से गुरु है इसलिए गुरु जी का वंश परंपरा की कोई महत्ता नहीं रहने पर भी हम उसको संक्षेप में कुछ बतला रहे हैं गुरु जी बहुत उन्नत वंश में पैदा हुए थे इनके पिताजी इनके पितामह इनके मामा और मातामह सभी उच्च वंश के परिवार के थे और वैष्णव थे गुरु जी के पिताजी के पिताजी उस समय के बंगाल भर में प्रसिद्ध एक संत के शिष्य थे जिनका नाम विजय कृष्ण गोस्वामी था वो इतने सिद्ध महात्मा थे पहले योगी थे पीछे से चैतन्य महाप्रभु के मंत्र इसमें दीक्षित हुए थे संप्रदाय में वो इतने सिद्ध महात्मा थे कि एक समय में ढाका के पास बरिशाल में वो बैठे थे उनके गुरुजी उनके पिताजी के गुरुजी क्या नाम बतलाया विजय कृष्ण गोस्वामी उन्होंने हठात कहा देखो देखो विद्यासागर जी जा रहे हैं ये स्वर्ग में जा रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और देवता लोग पुष्प उन पर बरसा रहे हैं तो उनके शिष्यों ने उसी समय में मेदिनीपुर में टेलीग्राम किया मेदिनीपुर में उनका देहांत हुआ था मेदिनीपुर में थे वो बहुत विद्वान थे संस्कृत के भारतवर्ष में उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे और बड़े समाज सेवक थे पुण्य कर्म करते थे सत्कर्म करते थे सत्कर्मी जिसको कहते हैं वो थे उन्होंने टेलीग्राम किया तो कहा जी ठीक उसी समय में जिसमें उन्होंने कहा था उसी समय उन्होंने शरीर त्याग किया था तो महापुरुष लोग इन सब चीजों को जान लेते हैं जो कौन कहाँ जा रहा है कौन कब मर गया या क्या हुआ जो अच्छे अच्छे लोग हैं तो उनके कहने से पता लगा जी ठीक उसी समय में हो गए ये महाप्रभु जी के धर्म में आकृष्ट होकर के पीछे से जोग जोगड़ा सब कुछ छोड़ करके और इसमें प्रविष्ट हुए थे, वैष्णव बने थे। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी के पिताजी थे, जिनका नाम याद है, याद नहीं है, तो उनके पिताजी उनके शिष्य थे और माताजी उन्हीं के शिष्या थी, इसलिए वैष्णव परिवार के थे। जिस समय उनका जन्म हुआ बड़े ही सुंदर थे, शरत चंद्र गुह ठाकुर था और माताजी का नाम भुवन मोहिनी। जिस समय पैदा हुए बड़े ही सुंदर, ऐसे कि जैसे जोनाकी पोका होता है, जुगनु होती है, ऐसे उनसे तेज निकलता था, इसलिए उनका नाम जोना रख दिया गया। जोना माने ज्योत्सना, भी चंद्र की जैसे ज्योत्सना होती है, ऐसे बड़े सुंदर सुकांत के रूप में वो पैदा हुए। हाँ बोल दीजिए। इनकी इनका स्वभाव अपने मैया के ऊपर में आया। मैया एक जमींदार फैमिली की लड़की थी, बहुत ही अच्छी शासक थी। इनके चार लड़के थे, बड़े लड़के श्रील प्रभुपाद के सन्यासी शिष्य दीक्षित और सन्यासी शिष्य प्रमोद कुमार जी, और पीछे से उनका नाम हुआ भक्ति केवल औरलोमी महाराज, बहुत ही विद्वान आदमी और वैष्णव लोग। इनके भाषण बड़े सुंदर होते थे, युक्तिपूर्ण होते थे। और दूसरे नंबर पर ये थे, इनको लोग भीम कहते थे और बड़े दयालु स्वभाव के थे। अपने पिताजी की उंगली पकड़ करके जहां पर धर्म सभाएं होती, जहां पर गीता पाठ होता, भागवत का पाठ होता, वहां पर बचपन से जाया करते। उनका स्वाभाविक ये रुचि था। इनकी मैया शासक थी, रूलर थी, बड़ी कठोर थी। कोई भी बच्चे बिगड़ने जाए, इसका अपने आप वो सबको कंट्रोल में कर रखती थी और सबको अच्छी तरह से पढ़वाती थी। पढ़ी लिखी भी विदुषी महिला थी। एक दिन जबकि ये स्कूल में पढ़ने लगे, एक दिन ये बहुत रात से लौटे अपने घर में। मैया लठिया लेकर के खड़ी थी शाम से, रात क्यों किया, गंदे लड़कों के साथ में घूमेगा, इसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, इसलिए लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी थी, आएगा तो उसे हम पीटेंगे और पूछेंगे ये कहां था। जब ये लौट करके आए करीब करीब 10 बजे रात में, 10 बजे तक खड़ी रही, कुछ ना खाया ना पिया। 10 बजे आए तो उनका हाथ पकड़ लिया, कहां था, कहां था तुम बतलाओ। ये बतला नहीं रहे थे, चुपचाप खड़े रहे। तुम बतलाएगा ना तभी पिटेंगे, बतलाओ तुम कहां था। उन्होंने कहा मैया देख, हम लोगों ने एक कमिटी बनाया है और हम लोगों के आसपास के गांव में या अपने गांव में जो दुखी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दरिद्र हैं, रोगी होते हैं, हम लोग जो तुम लोग खाने के लिए पैसे हमें देती है, जल खाने के लिए हम लोग टिफिन के पैसे एकत्र करके रखते हैं, अपने कुछ नहीं खाते हैं और उसे गरीबों की दिन दुखियों की सहायता करते हैं। अभी हाल में गांव में एक बुढ़िया महिला है, उसके पति नहीं है, लड़का नहीं है, उसको घर नहीं है, कुछ नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, और उसको कलरा हो गया और बहुत बीमार है, मरने मरने हो गई, कोई देखने वाला नहीं था। मैं उसके घर में गया और देखा कि खाने के लिए नहीं है, अब मर छटपटा रही है, पानी देने के लिए कोई नहीं है। मैं साथ ही साथ में डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, उसके लिए पैसे की व्यवस्था की, औषधि की व्यवस्था की, पथ्य की व्यवस्था की, और अपने साथियों को इसके बाद में लगा करके एक दूसरे साथी को बैठा दिया है, वो वहां पर है, और मैं अभी घर में आया और थोड़ी देर के बाद में मुझे फिर जाना पड़ेगा उस साथी को छुड़ाने के लिए, जो फिर मैं जाकर के रात में जग करके उसकी सेवा करूंगा। मैया के हाथ से लठिया गिर पड़ी, आंख के आंसू छल छलाए, हमारा बेटा इतना दयालु, मैं इतनी कठोर स्वभाव की, और उसको उन्होंने आलिंगन कर लिया। ऐसे दयालु प्रारंभ के जीवन के प्रारंभ से ही थे। दयालु किसको कहते हैं? जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्मसार। दया किसको कहते हैं? किसी को एक कपड़ा देना नहीं, कपड़ा देना दयालुता नहीं है। उन्होंने उसको रोगी की सेवा की, वो तो मर जाएगी, किंतु हृदय में दया होनी चाहिए। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, लौकिक रूप में भी पारलौकिक रूप में भी। अभी की जो दया है काम में नहीं आती, फिर जिसको देते हैं वो आपका शत्रु भी हो सकता है, और उस फिर दरिद्र हो जाएगा, फिर मरेगा एक दिन। किंतु परमार्थिक दया क्या है? जिस दया के करने के बाद में फिर किसी दया की जरूरत नहीं होती। अमन दो उदया दया, उसका मंद नहीं हो सकता है, उसका खराब कोई नहीं होगा। अभी मान लिया कि किसी की लड़की की आपने शादी करा दी, कुछ दिनों के बाद में आपका शत्रु हो सकता है। अभी जो शत्रु है वो शत्रु मित्र हो सकता है इस दया का, और फिर वो भूखा मर रहा है कुछ दे दो, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर वो मांगेगा। किंतु जिसको परमार्थिक दया करो, जो तुम कृष्ण का दास है, एक भी जीव को जो संसार में लगा उसकी एक रुचि को परिवर्तन करके भगवान में लगा दिया जाए, उसका जन्म जन्म जंतर उसका मंगल होगा, कल्याण हो जाएगा। इसे बढ़कर के कोई दया नहीं। एक भी जीव को यदि आपने किसी प्रकार से उसकी भावना को मोड़ करके भगवान की तरफ में लगा दिया, इसे बढ़कर के संसार विश्व में कोई दया नहीं है। वो फिर जन्म मरण से सदा के लिए बाहर होकर के कृष्ण की चरणों में गोलोक वृंदावन में जाएगा। किंतु ये संसारिक दयाओं का ऐसा ही फल होता है। एक मृग राजा को जानते हैं, उन्होंने करोड़ों करोड़ों गाय दान की, किंतु फल क्या हुआ? किसी ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सके, और अंत में उनको गिरगिट होकर के आना पड़ा। यही तो दान का फल है। इसलिए गुरु, हमारे गुरु जी पीछे से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के यहां आए, और असल दया कहते हैं कि इसको उन्होंने बतलाया, और तब भगवत कथा के प्रचार में और गुरु की सेवा में वैष्णव की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दिया। बोलिए। तकीकने पार, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनके लंबे लंबे अच्छे अच्छे हरे भरे पत्ते हों तो समझो ये बहुत अच्छा पेड़ होगा और फलदार होगा। ऐसे ही जीवन में पहले उसको देख करके ये बात कोई समझ सकता है कि ये जीवन में बहुत ही उन्नत व्यक्ति होगा और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। इनके जीवन ऐसा ही, जीवन में कभी भी स्वार्थ नहीं इनके जीवन में देखा गया। संतों के जीवन में निस्वार्थ भावना रहती है, पहली तो ये निशानी है। यदि किसी वर्ल्डली चीज में उनका अटैचमेंट हो तो वह संत नहीं हो सकता। देखा जाता है इनके जीवन में बचपन के प्रारंभ से ही अपने लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। यहां तक में मठ में आए इनके पास में कभी एक पैसा नहीं रखा, जो कुछ हुआ सब प्रभुपाद की सेवा के लिए लगा दिया। प्रभुपाद जी अपना सारा वेदांत ग्रंथ इनको दिया था। उनको कहते थे तुम डोकला है, डोकला माने मूर्ख, मूर्ख माने इस रूप में नहीं, अपने लिए कुछ करता नहीं। संत लोग अपना आप कुछ है ही नहीं है, भक्तों के लिए सर्वस्व करते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के लिए। इसलिए उनके जीवन के प्रारंभ से ही उसमें ऐसा कोई स्वार्थ ही नहीं देखा गया जो अपने लिए कुछ रखे। प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर जितने सन्यासी थे 2-10 लाख रुपया कलेक्शन करके बड़े बड़े मठ बनाए, किंतु हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर एक पैसा नहीं था, खाली हाथ आए। आज देखो जैसे आज भारतवर्ष में क्या विदेशों तक में सर्वत्र उनके बड़े बड़े मठ और ये सब हो रहे हैं और कितने शिष्य इत्यादि हैं। तो हम लोग भी वैसा निस्वार्थ रूप में हरि गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा। भगवान की बड़ी कृपा है, अकिंचन दीनहीन अकिंचन के ऊपर में भगवान की कृपा होती है। यदि अकिंचन नहीं रहेगा, प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि निष्किंचनस्य, उनके चरणों की धूली से यदि अभिषिक्त नहीं हो गए तब तक हरि भजन नहीं होगा, इसलिए निष्किंचन होना चाहिए। गुरु जी महाराज अंत तक निष्किंचन रहे, जब अप्रकट हो गए उनके पास में एक पैसा हम लोगों ने नहीं पाया, कुछ भी उनके पास में नहीं, सब कुछ ऐसे ही। हम लोगों ने भिक्षा से इधर उधर से उनका विरह उत्सव इत्यादि सब कुछ मनाया, एक पैसा भी नहीं। एक बात, हमने ये जो कुछ बातें सुनी है गुरु जी के मुख से सुनी है, मैं उनका बड़ा मुंह लग्गू था, मुंह लग्गू समझते हैं, मुंह लग्गू माने डरता फरता नहीं, उनसे सब समय प्रश्न किया करता और सारी उनकी सेवाएं कपड़े धोने से लेकर रसोई बनाना दे करके सभी सेवा मैं करता था उस समय उनकी, यहाँ तक कि बहुत सी सेवाएं जो मैं नहीं अपने मुख से कहना चाहता, मैं भी मृत्यु से डरा नहीं उनकी सेवा के लिए, उनके सेवकों के लिए। तो वो उनके जीवन में हमने बहुत से कुछ जो कुछ वो पहले का था वो मैंने उनके मुख से सुना। दौलतपुर कॉलेज में पहले वो कलकत्ते के उत्तर पाड़ा कॉलेज में वो भर्ती थे, उस समय में अभी तक गुरुजी से अपने नहीं मिले थे, वहां पर उनकी एक पिसी माँ थी माने बुआ जी थी, उनका नाम सरोज वासिनी था ना, बहुत ही उन्नत श्रेणी की विदुषी महिला थी, बहुत तत्वज्ञ, और सब सन्यासी लोग उनको प्रणाम करते थे, महिला होने पर भी सब महिला लोग उनको प्रणाम करते थे, दीदी दीदी कहा करते थे, और बहुत विद्वान, समस्त सिद्धांतों को जानने वाली, और कैसी थी, कवि थी, क्षण क्षण मात्र में सारी कविताएं नई नई बनाती थी। प्रभुपाद के जीवन में हमारे गुरु जी के संबंध में, यहाँ तक कि बामन महाराज जी के संबंध में, हम लोगों के संबंध में कविताएं सब बना करके साथ ही साथ में वो बना देती थी। कहा भाई, तो वो सरोज पिसी माने प्रभुपाद के संबंध में बहुत कुछ बतलाया, और उनको अपने साथ लेकर के प्रभुपाद जी के साथ में पास में मायापुर में ले आए।
प्रभुपाद जी की शिष्य थी,
प्रभुपाद की शिष्या थी, पहली शिष्या थी। प्रभुपाद महिलाओं को मंत्र नहीं देते थे, उनको दीक्षा नहीं देते थे, तो एक बार वो आई, उन्होंने कहा स्त्रियों में क्या स्त्रियां क्या जीव नहीं है, किस दोष से उनको दीक्षा आप नहीं देते हैं, किस क्यों, क्या उनका कल्याण नहीं होना है। तो उनकी बातों को सुन करके क्या उनको भजन करने का अधिकार नहीं है, क्या उनको भजन करने का स्त्रियों का अधिकार नहीं है, प्रभुपाद इसका उत्तर नहीं दे सके, और बड़े प्रसन्न होकर के सबसे पहली बार उनको शिष्य के रूप में ग्रहण किया। प्रभुपाद जी को हमारे गुरु जी को वही लेकर के आई, गुरु जी उनको बहुत आदर करते थे, उनकी प्रत्येक बात को मानते थे, गुरु जी से इनके भेंट होने पर गुरु जी प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। यह बात 1916 साल की, 1916 की है, 1916। इसके बाद में बीच बीच में आने लग गए, हरिनाम उन्होंने 1916 में लिया, और इसके बाद में कॉलेज में पढ़ते थे उत्तर कॉलेज कलकत्ते में, उसी समय में बड़े बड़े अपने प्रिंसिपल से और बड़े बड़े प्रोफेसर से बात होती थी उनकी। उस समय में एमए में बीए में चैतन्य चरितामृत था, गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज था, चैतन्य चरितामृत सिलेबस में था, उसका पहला पार्ट आदि खंड था बीए में और बाकी था एमए में। तो उसमें पहले खंड में जब ये पढ़ते थे तो उसमें है बदंति तत्व विदस तत्तम जज ज्ञानम अद्वयम, अद्वै ज्ञान का किसको कहते हैं, और दूसरा जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण न तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। वो लोग इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके जब भेदा भेद प्रकाश क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, उसी तरह से नहीं बतला सके। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने उनको स्पष्ट करके बतलाया प्रभुपाद जी का विचार। अद्वैत ज्ञान किसको कहते हैं, अभी हम बतलाएंगे तो बहुत से लोग पूछेंगे तो कोई बतला भी नहीं सकता। अद्वैत ज्ञान कौन है, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान करते हैं, अकेले हैं, किंतु अकेले में कैसा, बहुत्व लेकर के एकत्व है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। कृष्ण कहने से जीव जगत उनके परिकर इत्यादि सब कुछ मालूम होता है, सब मिला करके भ ग वा न। भ अखिल विश्व ब्रह्मांड के भर्ता पाल, यदि ब्रह्मांड नहीं रहे तब भर्ता किसके रहेंगे, और केवल यही जगत नहीं, गोलोक वृंदावन बैकुंठ इत्यादि सब सबके ये भर्ता हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। और गौ माने उनके नियामक हैं, नियामक माने संचालक, विश्व सारे इस विश्व का उस विश्व का तटस्थ शक्ति के से उत्पन्न ये सब का वो मूल संचालक है। वह अखिल प्राणियों में जो निवास करते हैं, अखिल प्राणी जिनमें निवास करते हैं वो भगवत शब्द वाच्य है, कृष्ण की शक्ति है। विशेष करके तीन शक्तियां, चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति, चित शक्ति से सारा वैकुंठ जगत प्रकट हुआ है, नंद जसोदा वृंदावन के सारे परिकर उनसे प्रकट हुए हैं, और तटस्था शक्ति से हम जैसे जीव, और ये माया शक्ति से सारे विश्व ब्रह्मांड एक ही नहीं लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। ये सब मिलाकर के भगवत शब्द वाच्य है, इन सब को मिलाकर के कृष्ण एक हैं, ये जगत वही एकमात्र अद्वितीय पर तत्व है, अद्वैत ज्ञान। उनकी शक्ति से सारे विश्व हुए हैं, उनकी शक्ति से सारे वैकुंठ जगत की सारी चीजें हुई हैं, और अंत में उन्हीं से ये सारा विश्व ब्रह्मांड मूल से, इसलिए कृष्ण ही पर तत्व है। इसको सुनकर के आश्चर्यचकित लोग हो गए, तटस्था शक्ति क्या है, कोई धारणा उनकी नहीं थी, गुरु जी ने उनको बतलाया। इस तरह से जभी जभी कुछ चैतन्य चेतामृत के कुछ कठिन सिद्धांत आते थे तो वो लोग कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, गुरु महाराज जी उनको बतलाते। गुरु जी ने सोचा इनके पास में हम रह करके क्या सीखेंगे, जब प्रिंसिपल को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके वो जो पढ़ते थे, जब उन लोगों को मैं ही पढ़ाता हूं तो उनसे क्या बात होगी, पढ़ करके उनसे हमारा कुछ लाभ नहीं है, इस जड़ विद्या के सीखने से कुछ भी लाभ नहीं है। जड़ विद्या जतो माया और वैभव जीवो के करे एक गाधा, ये जड़ विद्या का कुछ भी मूल्य नहीं है, वो क्या करती है, जीव को गधा बना देती है। श्री कृष्ण के भजन में ये जड़ विद्याएं बाधा होती हैं, इसलिए जड़ विद्या के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए। परमार्थिक विद्या जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, भक्ति तत्व, इस पर निर्भर रखने की जरूरत। हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कौन से कॉलेज में गए, कौन से कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में नहीं गए। श्रीनिवास आचार्य कौन से कॉलेज में गए, हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कख ग घ निकला नहीं जानते थे, और बड़े बड़े विद्वान प्रभुपाद जैसे विश्व विजयी व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक हुए, ये कौन सी विद्या है, यही परमार्थ की विद्या है। यदि कृष्ण भक्ति है तो सभी कुछ विद्याएं हैं, और कृष्ण भक्ति नहीं है तो कोई भी विद्या नहीं है, ऐसा सोच करके उन्होंने कॉलेज में जाना बंद कर दिया, और संपूर्ण रूप से 1919 ईस्वी में प्रभुपाद के चरणों में अपने को आत्मविकृत कर दिया। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोल दीजिए। एक समय की बात है, गुरुजी मायापुर में प्रभुपाद जी के पास में थे, उनकी मैया ने एक पत्र लिखा और वो पत्र प्रभुपाद जी के नाम से था, प्रभुपाद जी के पास में पत्र लिखा, प्रभुपाद जी ने पत्र पढ़ने के बाद में विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को अपने पास में बुलाया और उनसे बोले, देखो तुम्हारी मैया का ये पत्र आया है, तुम्हारे विरह में वो मर रही है और उसका अंतिम पत्र है, वो तुमको एक बार देख लेना चाहती है। सब समय विनोद विनोद करती है, कहते कहते अब मरने वाली है, इसलिए एक बार हमसे प्रार्थना किया है कि मैं उनको भेज दूं और वो घर में मैया के पास में एक बार भेज करके चला आए। उन्होंने विनोद को बुलाया और कहा, तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुम घर में जाओ और मैया से भेंट करके चले आओ और वो भी बहुत बीमार है, आज ही चले जाओ। उन्होंने गुरु जी को अपने पास से किराया का पैसा दिया और हमारे गुरु जी वहां से चले आए। जब शाम हो गई तो प्रभुपाद जी ने दूसरों से पूछा, अरे विनोद को मैंने कहा था अपनी मैया को पास में जाने के लिए, वो गया कि नहीं देखा हो तो? खोजते खोजते उन्होंने देखा एक कोने में बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पता लगा कर उनके पास। प्रभुपाद जी ने उनको बुलवाया, अरे तुमको मैंने कहा जी अपनी बूढ़ी मैया और जो मर रही है विनोद विनोद कर रही है, तुम जाओ एक बार भेंट कराओ, तुम क्यों नहीं गया? तो कुछ नहीं बोल रहे। दो तीन बार पूछने पर बतलाया जी गुरु जी, कोटि कोटि जन्मों के बाद में आप जैसे गुरु मिले हैं और मैं समझता हूं कि आपके मिलने से हमारा जीवन सफल हो रहा है, मैं कुछ भगवत तत्व समझ रहा हूं और भजन करने की चेष्टा कर रहा हूं, आज मैं लौट करके मैया के पास में जाऊं और मैया यदि कह गई बेटा अब मैं मर रही हूं, अब तुम्हें एक बात करना, हमारी अंतिम अभिलाषा है जो तुम घर में रहकर विवाह शादी करके के घर देखो, नहीं तो घर हमारा बर्बाद हो जाएगा, मैं अंतिम यही अभिलाषा है। तो मैं इस समय क्या करूंगा, मैं इसकी अभी अंतिम अभिलाषा पूरा करने के लिए घर में विवाह शादी करके अपना सारा जीवन अनंत जीवन में बर्बाद कर दूंगा, आप यदि कहिए तो अब मैं जाऊं। प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ गए, कहिए यही जीवन की सफलता है, बड़े प्रसन्न हुए। माता पिता जन्मे जन्मे सबे पार, गुरु कृष्ण नहीं मिले भज ही, अरे माता पिता तो सबके मिलते हैं किंतु गुरु बहुत सौभाग्य से मिलते हैं और कृष्ण बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। यदि माता पिता की सेवा तो संसार में करने वाले श्रवण कुमार इत्यादि बहुत हुए, उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनका जीवन सार्थक नहीं। यदि गुरु की सेवा करे और गुरु के बात के अनुसार में कृष्ण का भजन करे, उसका जीवन सदा के लिए ही सफल हो जाएगा, भगवान की सेवा मिलकर के संसारिक पचड़ों से उठ करके कृष्ण प्रेम को पा सकता है, अन्यथा नहीं। प्रभुपाद उनके विचारों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए और नहीं गए। हम देखते हैं बहुत से लोग मठ में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ऊपरी विचारों को थोड़ा सा सीख लेते हैं और सोचते कि हमारा जीवन कमाने के लिए सब ठीक हो गया, न गुरु जी के प्रति न श्रद्धा न कुछ, कुछ दिनों के बाद में पुनर्मुसी को भव, वैसे उनकी दुर्गति हो जाती है, संसार में चले जाते हैं। खूब निष्ठा के साथ में यदि कोई गुरु सेवा करे, उनके वचनों को मान करके कृष्ण भजन यदि करे, और जैसे हमारे गुरु जी दिन रात परिश्रम करके जग करके गुरु जी की सेवा करते थे, वैसा यदि कोई करे तो ऐसे ही भगवत भक्त होकर के संसार से सदा के लिए चला जाएगा। इसलिए माता पिता का स्नेह, स्त्री की ममता, उनके प्रति प्रीति ये संसार में डुबाएगी। राजा मोरे स्नेह करे ए मोर बंधन, राजा मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, पिता मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन, भाई मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। जो संसारिक लोग जो हमें प्रीति करते हैं वो हमें बांधते हैं, बल्कि वो ठीक है जो घर वाले शत्रुता करें तो जल्दी से घर से निकल करके भगवान का भजन करें। ये बहुत से लोगों को ये दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, किंतु बात यही है, हम भगवान के ही पुत्र हैं, भगवान की संतान है, भगवान के हम सेवक हैं, इनके नहीं। वो तो माया के वजह से ऐसा हो रहा है और तुम चाहो ना चाहो ये छोड़ना पड़ेगा, इसलिए गुरु जी के लाइन में ही आना पड़ेगा। तभी कल्याण होगा, बतलाइए। डिवोटीज, बहुत से लोग ब्रह्मचारी अभी विवाह शादी नहीं किया है, मेरे पास में आते हैं और कहते हैं महाराज जी आप आदेश दीजिए मैं विवाह करूं। विवाह के लिए बड़े उत्सुक। अच्छा, विवाह करने से भक्ति होगी? यदि तुम यहां हमारे पास नहीं आने के पहले शादी कर लेते कोई बात नहीं थी, अब यहां आकर के भगवत भक्ति के विचारों को सुनकर के अब फिर तुम विवाह करना चाहता है, विवाह से तुम्हारी भक्ति होगी न? एनर्जी उसमें नष्ट होकर के तुम संसार में जाकर के डूबेगा और मरेगा। इस चीज को नहीं समझते, इस चीज को वेस्टर्न डिवोटीज इस चीज को अच्छी तरह से समझे। विवाह करने से यदि भगवान मिलते तो मैं तो 1,00,000 विवाह कर लूं। अभी मिलेंगे भगवान? इफ शास्त्र हैज टोल्ड, अवर गुरुदेव हैज टोल्ड दैट बाई इफ यू डू यू मैरी हैव ए मैरिज देन यू हैव श्योरली हैव भक्ति, देन आई विल डू लैक्स एंड लैक्स मैरिजेस। बट आई नो, मैं जानता हूं तुझे भक्ति नहीं होती। फिर जानबूझ करके समझबूझ करके लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? जानने के पहले तुम शादी नहीं किया है या कर लिया वो दूसरी बात, किंतु सदगुरु के पास में जा करके और इसको समझ करके और अपनी एनर्जी संसार में देना फिर विवाह करना, ये कहां तक उचित है? मैं कहता हूं कि जिसको इच्छा है वो करे, क्योंकि उस कहने से भी नहीं मानेंगे, उनका अधिकारी नहीं है। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं भाई, पहले जो कुछ कर लिया है कर लिया है, किंतु अब गुरु धारण करने के बाद जिसको समझो विवाह करने से भक्ति नहीं होगी, इस चीज को समझो, तुम्हारी एनर्जी उसमें जाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी थे, प्रभुपाद जी ब्रह्मचारी थे, गौर किशोर दास ये सभी सब लोग ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य। इसके बाद में जिन्होंने पहले इस चीज को नहीं समझा था, उस तरह से हमारे बहुत से भक्त लोग महाप्रभु के समय में भी शादी किए थे। इसलिए ये बुरा तो नहीं है शादी कर लिया, किंतु समझने बूझने के बाद में अब फिर शादी करे ब्रह्मचारी 50 वर्ष या 20 वर्ष रहने के बाद 10 वर्ष के रहने के बाद में, ये उचित मैं नहीं समझता। यदि हम अपने को कंट्रोल नहीं करेंगे तो भजन कैसे होगा? इसलिए इस विषय पर खूब गहरा विचार होना चाहिए। गुरु जी बड़े दयालु थे, बहुत दयालु, सो मर्सीफुल। एक बार प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को कहा, गुरु जी को कहा, जी इसको मठ से बाहर कर दो। वो सब समय वैष्णव की निंदा करता था, सबकी निंदा करता था। प्रभुपाद जी के कानों में गया, ये वैष्णव को निंदा करता है, हमने उसको सुधार करने के लिए दिया, जो सुधरेगा तो नहीं सुधार करके सबकी ये निंदा करता है, सबको कंट्रोल करता है। इसलिए गुरु जी को बोला, विनोद आज ही इसका सारा सामान उसको साथ में लेकर के बैलगाड़ी में चढ़ा करके इसको मायापुर से उस नवद्वीप मार्ग में पार करके इसको भगा दो यहां से और मठ में नहीं आने पाए। गुरु जी को आदेश दिया, गुरु जी चले गए। शाम हो गई, प्रभुपाद जी ने पूछा, जब विनोद को मैंने कहा इसको निकाल दो मठ से, निकाला कि नहीं? वो बड़ा भारी वैसा ही है, वो नहीं निकाल सकता। उन्होंने पूछवा, जब विनोद कहाँ है? तो विनोद जी खोजते 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 लोगों ने देखा जो हरिनाम कर रहे हैं कहीं एकांत में। तो प्रभुपाद को पता चला, जैसे ये तो उनको बाहर नहीं किया है, तो उन्होंने गोकुलानंद नाम के एक उड़िया भक्त थे उनको कहा, जे गोकुलानंद तुम्हें इसे जाकर के अभी बाहर कर दो, विनोद नहीं कर सकता है। तो वो बैलगाड़ी ले आए, उसका सारा सामान लाद करके और जबरदस्ती उसका गला पकड़ करके उसको बाहर कर दिया। दूसरे दिन प्रभुपाद ने विनोद जी को बुलाया, क्यों नहीं तुमने बाहर किया, क्या बात है? तो जे प्रभुपाद आप बड़े दयालु हैं, विश्व के जीवों पर दया करने के लिए आपका यहां पर आगमन हुआ है, प्रकट हुआ। मैं जानता हूं कि आज आप कह रहे हैं निकाल दो, किंतु बड़े आप दयालु हैं। आप कहेंगे कि क्यों निकाला, मैंने तो उस समय ऐसा कह दिया, तुमने क्यों निकाला, एक जीवन उसका बर्बाद हो गया। आज वो वैष्णव यहां पर रहता, उसको सुधार का कुछ न कुछ मौका मिलता, अब उसको निकाल दिया अब वो कहां उसको न तो सत्संग मिलेगा न कुछ, उसका जीवन ही बर्बाद गया, वो भक्ति का विरोधी हो गया, उसका जीवन चौपट हो गया, ऐसा सोच करके हमने नहीं निकाला। कितनी ऊंची बात है, प्रभुपाद उनके विचारों का समर्थन किया। वैष्णव लोग किसी दूसरे का अपराध नहीं लेते, विशेष करके प्रभुपाद लेंगे। प्रभुपाद तो इतने दयालु थे, एक आदमी बड़ा भारी व्यभिचारी था, बदमाश, किंतु बड़ा काम का था, इधर उधर का काम खूब करता था, किंतु भीतर से स्त्रियों के प्रति आसक्त व्यभिचारी था। प्रभुपाद मठ की जो सेवा करता है, इसलिए एक बार किसी ने सोने के ग्लास में किसी चीज का जूस प्रभुपाद को दिया, तो प्रभुपाद ने केवल होठों में छुआ करके और उसी आदमी को दे दिया, उस व्यभिचारी को। किस लिए दिया? उसको किसी प्रकार से सुधरने का चांस दिया। हम लोग तो सभी अपराध करने वाले जीव हैं, यदि गुरु वैष्णव थोड़ा सा अपराध देकर के यदि उसको हटा दिया तो उनकी दया का है। इसलिए वैष्णव लोग बड़े, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा जिन्होंने, उन्होंने कहा जी प्रभु इनका अपराध मत लेंगे, आप इसको कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा दयालु होना चाहिए। तो हमारे गुरु जी भी इसी कोटि के दयालु थे। हजार कोई अब दोष करता था, किसी का दोष नहीं लेते थे, सभी का गुण लेते थे, और प्रभुपाद की सेवा के लिए जी जान से सब समय तत्पर रहते थे। बोलिए serving Krishna because he is Brahma. So always pratishtha in Brahma, and also that have never desired to laugh, play or anything with any lady. Never.
So Maharaj is explaining, as you have heard, that akhand brahmachari does not mean that only to remain celibate is from the...
बहुत सी लीला कथाएं, मैं 10-20 रात भी मैं कहता चलूं तो ये समाप्त नहीं हूं। बहुत सी शिक्षापूर्ण उनकी शिक्षाएं हैं। एक समय में प्रभुपाद के समय के बाद में जब उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, उससे बहुत पहले 1923 में 1923 अभयचरण भक्ति वेद अभयचरण खेम अधरी young boy, he was master of English and he was very, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति। प्रभुपाद से मिले, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए उनसे मिलकर। पीछे से विनोद बिहारी जी से भी उनका परिचय हुआ, दोनों परस्पर मित्र हुए। 1923 से ही दोनों ये मित्र रहे, पीछे से सारा जीवन एक साथ में रहे और भक्ति का शुद्ध प्रचार किया। बड़े सुंदर लेखक थे। गुरु महाराज ने उनको प्रभुपाद जी के बाद में गौड़ीय पत्रिका का और भागवत पत्रिका का संपादक संघ का मालिक बनाया था। बहुत अच्छा लेख लिखते थे। जब प्रभुपाद प्रकट हो गए तो एक दिन गुरु महाराज जी गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, उसमें अभय चरणार भक्ति वेदांत भी थे। उन्होंने अपने पत्र में स्वयं लिखा है, वो पत्र प्रकाशित होगा, आप लोग देखेंगे। उसमें गौरव महाराज जी ने गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, उसमें उनके पास में एक पैसा नहीं था और प्रभुपाद के बहुत से सारे 20-25 शिष्य उनके पास में थे। कुछ खाने को नहीं था, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नहीं था, और उसी समय में उनके एक और गुरु भाई आए, खाने में बड़े शौकीन थे। एकादशी का दिन, एक पैसा नहीं जो वैष्णव की सेवा की जा सके। गुरु महाराज जी खाट पर बैठे हुए पैर पर पैर रख करके ऐसे ऐसे करते हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे, क्या किया जाए। इतने में एक गौराया पक्षी, छोटी सी टुनटुन पक्षी, ऊपर से मुख में कुछ पैसे कपड़े में बंधे हुए लेकर के उनके सामने गिराया, झन से बजा। उन्होंने झट उठा लिया जी ये क्या है, और ऐसा करके और वो छोटी सी गौरैया पक्षी वहां से उड़ गई। खोल करके देखा जे उस समय का 6.5 की 6.5 आने पैसे थे। पैसे देखा ना पहले का 6.5 आना पैसे, बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये उस समय में बामन महाराज जी थे, उनका नाम था सज्जन सेवक, सज्जन सेवक को उन्होंने पैसे दिए और उनसे बाजार मंगवाया, काफी संदेश दो तीन ले आए और मिठाई ले आई और आलू ले आए और सब चीजों को ले आया, घी ले आए थोड़ा, 6.5 आने पैसे में ये सब चीजें सब आ गई और उन वैष्णव को दो चार संदेश दे करके उनको खिलाया और इसके बाद में रसोई बनी, ठाकुर जी को भोग लगा, एकादशी का ये सब पारण। इतने में थोड़ी देर में ही एक डाकिया ने पुकारा, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहाँ हैं? इतने में लोगों ने कहा जी यहाँ है, 100 रुपया मनी ऑर्डर आया। भक्ति सर्वस्व गिरी महाराज जी उनके गुरु भाई थे, उन्होंने रेंगून से भेजा, उस समय का 100 रुपया माने कितना, आज 10-15 हजार से भी अधिक। पैसे को पा करके आंखों में आंसू आ गए, जो गुरु भाई यदि हो तो ऐसा। और फिर इसके बाद में प्रचार में निकले और भारतवर्ष में सर्वत्र उन्होंने मठ की स्थापना की और उन्होंने बड़े जोर शोर से प्रचार किया। भगवान पर इसे निर्भर रहना चाहिए, जो भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता, कल क्या खाएंगे तो वो क्या भजन करेगा। जिस प्रकार से भगवान उसको रखते हैं उसी प्रकार से संतोष लाभ करके भगवान का भजन करें, निश्चिंत होकर के, इसको कहते हैं निष्किंचन वैष्णव। कभी भी किसी बात के लिए चिंता ना करे तो वो भजन कर सकता है, अन्यथा वो भजन नहीं कर सकता है। गुरु महाराज इस कोटि के महापुरुष एक थे, वो जगत के व्यक्ति नहीं थे, वो तो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए गोलोक वृंदावन से वो पधारे थे। उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, इस तरह से विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी और उनका पूर्व नाम था विनोद मंजरी। तो इस तरह से गुरु जी का जीवन चरित्र बहुत ही उन्नत कोटि की, बहुत तरह की शिक्षाएं हम लोग पा सकते हैं। और भी एक बार मैंने सुना उनके गुरु भाइयों से, गुरु जी बड़े कठोर हैं, नीरस हैं, बड़े वैदांतिक पंडित हैं, इसलिए प्रभुपाद ने वेदांत की सारी पुस्तकें उनको दी है और सब जगह वेदांत का प्रचार करते थे, इसीलिए गौड़ीय वेदांत समिति की प्रतिष्ठा की पहले लिखा है। एक समय मथुरा में गुरु जी हमारे पधारे और मैं गोपाल चंपू पढ़ रहा था और प्रसंग था दामबंधन लीला और उसमें ये प्रसंग था। पहले मैंने उसको पढ़ा, जसोदा मैया ने किस प्रकार से कृष्ण को बांधा और बांधने के बाद में कृष्ण ओखल को लेकर के पेड़ों के बीच में गए और पेड़ गिर गए और उस समय नंद बाबा दौड़े हुए आए, नंद बाबा को देख करके कृष्ण एकदम रोने लगे, उन्होंने गोदी में ली और उनका बंधन खोला और एक लड्डू दिया। कृष्ण उस समय बड़े जोर से रो रहे थे, आंखों में आंसू भी गिर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, काजल यहाँ पर सब लग गया था। इतने में नंद बाबा ने कहा जो बेटा तुमको मारा किसने, किसने बांधा? बड़ी मुश्किल से कृष्ण कहा जी मैया, मैया के तरफ में देखा बहुत दूर से खड़ी थी। खोला किसने? आपने खोला। अच्छा, तुम्हारी मैया इतनी निष्ठुर है, अब उसके पास नहीं जाना है। बलदेव को और कृष्ण को गोदी में बैठाया अपने कंधों पर और स्नान करने के लिए गए, स्नान करके घर में आए, आज रसोई नहीं बनी, सभी लोग उपवास, शाम हो गई। नंद बाबा ने कृष्ण को गोदोहन करके धारोष्ण और मिश्री खिला करके उनका पेट भर दिया। धारोष्ण जानते हैं ना, गायों को दूते हुए मुख में दे देंगे, और मिश्री का टुकड़ा, कृष्ण और बलदेव जी का पेट भर गया। शाम जब होने को आई, रात जसोदा मैया को विलाप करते हुए देख करके, मूर्छित पड़ी हुई देख करके, नंद बाबा के बड़े भैया उपानंद जी की पत्नी और रोहिणी मैया कृष्ण के पास में गई, नंद बाबा के पास में, बोली बेटा मैया के पास नहीं जाएगा, कहाँ रहेगा? पिताजी के पास। खेलेगा किसके पास? दाऊ भैया के साथ। खाएगा क्या? बाबा हमको खिलाएंगे जो खा लेंगे दूध, अच्छा नहीं जाएगा नहीं। उस समय कृष्ण पूरा बोलना भी नहीं जानते हैं। रोहिणी मैया ने कहा यदि तेरी मैया मर जाए तो, मैया ऐसे हो जाए तो माने मर जाए तो तुम्हारे वीर में तो फिर क्या होगा। बस कृष्ण उसी समय में मैया मैया का कर रोने लगे, हाथ करके मैया की हाँ मैया। जितने लोग थे सभी लोग रोने लग गए, रोहिणी मैया भी रोने लगी, कृष्ण बलदेव सभी लोग रोने लगे। उसको पकड़ कर रोहिणी मैया यशोदा जी के गोद में डाल। अभी तक तो वो शांत थी, शांत माने कि लकड़ी के समान सूख गई थी, नीरस हो गई थी मरने मरने। अब उनका प्राण लौटा और बड़ी जोर से अब रोने लगी। फिर रसोई बनी, रोहिणी जी ने सबको खिलाया। नंद बाबा आए, देखा जी सब लोग खाया, यशोदा मैया ने नहीं खाया। बाबा ने, नंद बाबा ने इशारा किया, कृष्ण अपनी मैया को पकड़ करके और जबरदस्ती उनको खिलाया। ऐसा देख करके सभी लोग रो रहे थे। उस समय में जब मैंने उनको गुरु जी से कहा विस्तार पूर्वक, बड़े करुण स्वर से मैंने कहा, गुरु महाराज एकदम फफक फफक करके रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय गुरु जी का यह भाव हमने देखा, वैष्णव में ऐसा भाव सहजी नहीं देखा जाता। कृष्ण कथा सुनते ही चित्त द्रवित हो जाता है, ऐसा कितने लोग। प्रभुपाद का नाम प्रभु पार नहीं कर सकते थे, एकदम द्रवित होकर के रोने लगते थे। फिर हम लोगों को इशारा करते थे तुम कुछ बोलो, उस समय हम कुछ नहीं जानते तभी बोलते। अपूर्व गुरु के प्रति निष्ठा थी और ऐसे उनके सुंदर भाव थे। एक तरफ में कठोर थे, कैसे वज्रादपि कठोरानी, और दूसरी तरफ मृदुनी कुसुम से भी अत्यंत कोमल स्वभाव के गुरु जी थे। उनके निकट में जो नहीं आया इस चीज को नहीं समझ सका। लोग सोचते थे बड़े भारी शासक हैं, कंट्रोलर हैं, किंतु हम लोगों ने उनके प्रेम पूर्वक प्रेम की ये सब चीजें हम गुरु जी के अंदर में देखी थी। इसलिए एक समय में गुरु जी की जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से मैं आचार्य और ये सब की सब व्यवस्था करके जाना चाहता, हमसे एकांत में अकेले में उन्होंने कहा था। हमने कहा जी गुरु जी हम आचार्य बनने के लिए नहीं आए, हमारे ऊपर में तो यही कृपा करें कि मैं कृष्ण भक्ति को पा सकूं, आपके इन विचारों को आंतरिक विचारों को पा सकूं। हमारे बड़े भैया हैं पूज्यपाद वामन महाराज जी, पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज जी हैं, यदि ये सब देना है तो यदि हमें कुछ कहेंगे तो हम तो उन्हीं को दे देंगे, उनके चरणों का सेवक हूं, हमारे शिक्षा गुरु लोग हैं, मैं इस सब के लिए नहीं आया। इस तरह से गुरु महाराज जी सब प्रकार से विचारों में प्रौढ़ वैदांतिक पंडित और साथ साथ में परम रसी और भावुक व्यक्ति थे। उनकी भावुकता देखने के लिए आप लोग यदि चाहें उनके द्वारा मंगला आरती है उसको पढ़ेंगे, सारी गोविंद लीलामृत उसी में उन्होंने भर दिया है, जो कि मुख से जिसका व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्या है जो करण पूजन, सुमधुर ध्वनि करे जतो साखी गण करे मधुर, ये सब गोविंद लीलामृत की ऐसी सुंदर और मधुर चीजें हैं जो निशांत लीला की हैं, किसी से मुख से ये सब चीज कहने की नहीं है। वो तो भजन की चीज है जिसको आदमी समझ सकता है। तो गुरु महाराज जी को यदि समझना है तो वैदांतिक थे, उनका स्वरूप गत विचार नहीं है, वो तो इस जगत के लिए ही है। उनका असल स्वरूप का परिचय है उनके अंदर में वृंदा देवी की, जो उन्होंने परिक्रमा की लिखी है, मंगल आरती लिखी है, प्रभुपाद के लिए जो आरती लिखी है, क्या लिखा है, भक्ति विनोद धारा जलशंख धार, भक्ति विनोद, ये सब चीजों को ग्रहण करने से ही हम प्रभु अपने गुरु जी को समझ सकते हैं, प्रभु अपने छिड़ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को समझ। इसलिए क्या है ना, विनोद बिहारी अष्टक कितना सुंदर, राधा चिंता निमेश जस कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम बंदे राधा लिंगित, इसमें समस्त शास्त्र रस शास्त्र वो जल नील मणि इत्यादि सभी इसमें भर दिया है उन्होंने गागर में सागर की बात में। इसलिए जितना दिन तक हम उनके गुणों का वर्णन कर सकेंगे हम नहीं कर सकेंगे। हम एक उनका थोड़ा सा स्पर्श महिमा काम करने के लिए हम अपने को बहुत ही सौभाग्यवान समझते हैं। आप अभी इसलिए अभी आरती देखेंगे और कल के लिए हम लोग राधा दामोदर अष्टक का पाठ करेंगे 6 बजे से 7 बजे और इसके बाद में हम लोग परिक्रमा के लिए जाएंगे सेवा कुंज इमली तला, वहां से राधा जी का कुंज गोपीनाथ गौड़ीय मठ, वहां से श्रृंगार भट्ट, श्रृंगार भट्ट से राधा श्याम सुंदर जी का, ये सब देख करके हम लोग लौटेंगे 9 बजे 9:30 बजे तक हम लोग लौट आएंगे। आप लोग सभी लोग जाएंगे और इसके बाद में फिर दूसरे दिन बाकी जो रह जाएगा उसकी हम परिक्रमा करेंगे। आप लोग खूब सावधानी से हरि कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन में पालन करने की चेष्टा करेंगे। गुरु महाराज जी में जैसे गुरु के प्रति निष्ठा थी, वैष्णव की सेवा की भावना थी, निस्वार्थ रूप में भगवान की सेवा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम आनुकल्येन कृष्णा सुलनम भक्ति रुत्तमा अतृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहि सुनना अमानिना मान देन की एकदम साक्षात मूर्ति स्वरूप थे। भजन करने में तृणादप सुनेच की बाधा लग जाती है, कभी कभी तामसिक भाव आ जाता है, गुरु वैष्णव के चरित्र को हम समझ नहीं पाते। इसलिए तृणादपि सुनेच ये बाधा पड़ जाती है हमारे भजन में। इसलिए तृणादपि सुनीच होकर के दूसरों को यथाजोग्य सम्मान देते हुए विपत्तियां आपत्तियों को सब समय सिर पर धारण करके भगवान का एकांतिक रूप में भजन करना चाहिए। और अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर इसका यथार्थ तात्पर्य जीवन में अनुसंधान करके उसमें प्रतिष्ठित होना ही ये भक्ति का स्वरूप है। गुरु महाराज जी में हमने ये सभी चीजें देखी, एक साथ में बड़े कठोर दूसरे तरफ मृदु भक्ति का संपूर्ण विचार उनके हृदय में, तृणादपि सुनीच भी और साथ साथ में हनुमान जैसा महा विराट स्वरूप भी उनके अंदर हमने देखा। सभी लोग उनके प्रभाव से कांपते थे, उनके पास में नहीं जाते थे, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सन्यासी लोग उनके गुरु भाई भी उनके पास में सहज ही नहीं जाते थे, उनके से सीनियर लोग भी उनसे डरते थे उनके विचारों से और उनके चरित्र और ये सबके द्वारा। हम आज उनके इस दुर्भाव के दिन में हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों पर ऊपर में कृपा करें, हमारे ऊपर में भी कृपा करें, जैसे हम लोग शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर सकें और उनके जैसे ही गुरु निष्ठा हमारे अंदर में हो और अंत में भजन करते 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 उनके उपायों से बताए हुए उपायों से चल करके कृष्ण प्रेम राधा दास से हम लोग लाभ कर सकें। बोलो गौर प्रेमानंदे।